पांच समिति, पांच इंद्री रोध हो गए। अब छह आवश्यक कौन कौन से हैं? अवश्य करने योग्य रोध जो क्रियाएं हैं वे आवश्यक कहलाती हैं। दूसरी आवश्यक की परिभाषा ये भी है कि इंद्रियों के वशीभूत न होने वाले साधु के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वे सब आवश्यक कहलाती हैं, क्योंकि अवश्य होकर की गई है। इंद्रिय और मन के वश में नहीं है इसलिए अवश्य है, और अवश्य अर्थात साधु के द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाएं आवश्यक कहलाएंगी। वो छह क्रियाएं हैं और सात शेष गुण हैं, उनको भी क्रम से कहते हैं। समता संहारें, स्तुति उचारें, वंदना जिन देव को, नित करें श्रुति रति करें प्रतिक्रम, तजें तन अहमेव को। जिनके न नौन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाही पिछली रैन में, कछु शयन एकासन कर। यहाँ पर आवश्यकों को लेकर के दौलत राम जी और जो आचार्य परंपरा है उसमें थोड़ा सा फर्क है। दौलत राम जी ने जो है एक आवश्यक स्वाध्याय के रूप में रखा है, जबकि आचार्यों ने स्वाध्याय को आवश्यक न रख करके उसकी जगह पर प्रत्याख्यान को आवश्यक रखा है, जो इसमें नहीं है। समता अर्थात सामायिक, समता समारे अर्थात एक निश्चित समय पर तीनों संध्या कालों में और राग देश से रहित होकर के आत्मा में लीन होते हैं, वो जो सामायिक है। सामायिक का अर्थ समता भाव है, इसलिए वो कह रहे हैं कि तीन संध्याओं में समता भाव धारण करना यही सामायिक है। और स्तुति उचारें अर्थात स्तुति करना, 24 तीर्थंकरों के गुणगान करने का नाम स्तुति या स्तवन कहलाता है, और किसी एक तीर्थंकर के गुणगान करना और उनकी उनको प्रणाम इत्यादि करना ये सब वंदना कहलाती है। 24 तीर्थंकरों के गुणगान करना वो कहलाएगी स्तुति या स्तवन नाम का आवश्यक, और वंदना किसी एक तीर्थंकर की,
ऐसा माने?
हाँ
अच्छा, उसमें भी अंतर
है। हाँ, यही फर्क है कि एक तीर्थंकर की जो स्तुति की जाएगी वो तो वंदना कहलाएगी, और 24 तीर्थंकर की जाएगी वो स्तवन कहलाएगा या स्तुति कहलाएगा। स्तुति और वंदना ये दो अलग अलग आवश्यक है। और फिर उसके बाद हम इसमें जोड़ लेते हैं स्वाध्याय की नित करें, श्रुति रति की जगह पर नित करें प्रत्याख्यान, अर्थात भावी आगामी जो त्याग किया है उसका संकल्प करना वो प्रत्याख्यान कहलाता है। और प्रतिक्रमण अर्थात किए गए दोषों का निराकरण करने की प्रक्रिया का नाम प्रतिक्रमण है। उत्तजें तन अहमेव को, शरीर में आत्मपने या ममत्व भाव का त्याग कर देने का नाम कायोत्सर्ग है, वो भी उनका एक आवश्यक है। इस तरह सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना और कायोत्सर्ग, ये क्षय आवश्यक।
बैठ के भी कर सकते हैं और
खड़े होकर, कायोत्सर्ग जो है दोनों प्रकार से। जिनके न न्योन न दंत धोवन, जो स्नान भी नहीं करते हैं इसलिए आयस्नान नाम का उनके व्रत है, और दांतों को नहीं धोते हैं अर्थात दांतों को किसी विशेष प्रकार के मंजन इत्यादि के द्वारा चमकदार नहीं बनाते हैं, अहिंसा का दृष्टिकोण वहां प्रमुख है, इसलिए उनके अदंत धावन नाम का एक व्रत है। आयस्नान हो गए, अदंत धावन, लेश अंबर आवरण और उनके लेश मात्र भी वस्त्र इत्यादि के द्वारा वे अपने शरीर को नहीं ढकते हैं, इस तरह से ये अचेलक नाम का गुण है। और भूमाही पिछली रैन में कछु सैन एकासन करें, ये दौलत राम जी ने अपने मन से लाइन लिखी है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि भूमि पर शयन करेंगे, और भूमि भी जो है चार प्रकार की मानी गई है, एक कंकर पत्थर से युक्त सामान्य जो जमीन है उस पर सो जाना, या कि कास्ट फलक पर सोना, या कि तृण इत्यादि अर्थात घास के या चटाई इत्यादि को ग्रहण करके इस पर सोना, या शिलातल पर सोना, ये जो है चार प्रकार के भूमि हैं। और एक पार्श्व से तो सोते ही हैं, करवट बदलेंगे अगर आवश्यक होने पर तो जीव राशि का घात ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रमार्जन करके करेंगे, लेकिन अल्प निद्रा ही लेते हैं। पिछली रैन का अर्थ यहाँ पर पश्चिम रात्रि है, अर्थात मुख तो 12 से 3 बजे तक का समय है, तो वो 11 से 4 तक का समय ले लिया लगभग, उसमें ही वो विश्राम करते हैं। पिछली रात का अर्थ ये सुबह सुबह नहीं ले लेना कि पिछली पश्चिम रात मतलब सुबह नहीं, पिछली रात मतलब वो 11 से 4 तक का बीच का 12 से 1 प्रहर,
रोज प्रतिदिन 4 बजे उठ जाते हैं।
हाँ, 4 के पहले उठ जाते हैं।
अच्छा,
3:30-4 बजे से काम शुरू कर हो जाती है, थोड़ा बहुत रह जाता है तो
जैसे मैं तो अगर 6 घंटे नहीं सो तो मुझे थोड़ा सा
6 घंटे तो सो जाते हैं, 5 या 6 घंटे मुझे महाराज जी, क्योंकि ज्यादा लिफ्ट वर्क नहीं करते, जब बिहार यहाँ करते हैं तो थोड़ा सा एक ही बार खाते हैं, इसलिए जो है ज्यादा निद्रा का नहीं, 6 घंटे बहुत होती, पर्याप्त होती है निद्रा 6 घंटे। किस तरह उनके कितने गुण हो गए बाह्य में, जो शेष 7 गुण है उसमें से आयुष्नान हो गया, अदंत धावन हो गया और अचेलक हो गया और भूसयन हो गया। अब बचे एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कश लौंच करत न टरत परिश्रह सो लगे निज ध्यान में, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुति करण अर्घाव तारण अशु प्रहारण में सदा समता करण। 3 और शेष गुण उनके बचे हैं, वो ये हैं कि वो दिन में ही एक बार आहार लेते हैं, ठिदि भोजन ए भत्तम च, एक बार भोजन लेना दिन में, और खड़े होकर के लेते हैं अलप अर्थात बिना किसी विकल्प के। यहाँ पर अलप का अर्थ थोड़ा भी है,
अल्प
अल्प अलप मतलब अल्प, खड़े होकर के अल्प मात्रा में और अपने हाथ में ही अंजलि में निज निज पान में। वास्तव में इसका अर्थ ये है कि अपने ही आत्मा के ध्यान में रहते हैं, निज पान अर्थात अपने ही आत्मा का आनंद का पान करते रहते हैं।
ध्यान
अपने हाथ में भी, अपने निज हाथ में निज पान, पानी पात्र से पान से जो है हाथ भी बन गए, तो अपने हाथ में। इस तरह क्या अर्थ हुआ कि एक बार लेते हैं खड़े होकर के पानी पात्र में आहार लेते हैं, ये 2 मूल गुण हो गए। और कश लॉन्च करत और केश लॉन्च करते हैं, ये केश लॉन्चन एक व्रत है। इस तरह ये तो हो गए उनके 7 शेष गुण, इस तरह 28 हो गए। अब कहते हैं कि परिचय भी सहन करते हैं और अपने आत्मा का ध्यान भी करते हैं, ये मूल गुण में शामिल नहीं है परिचय सहन करने। तरत न परिचय, केश लॉन्च करते हैं और परिचय से विचलित नहीं होते हैं, अपने निज आत्मा के ध्यान में हमेशा लगे रहते हैं, समता भाव उनका मुख है। तो अरि और मित्र, शत्रु और मित्र में, महल और स्मशान में, कंचन और कांच में अर्थात सोने और सामान्य कांच में, निंदा और स्तुति में, इन सब में, और या कि कोई अर्घावतारण अर्घ के द्वारा पूजा करे, या कि कोई असी का प्रहार करे अर्थात तलवार भी उनके ऊपर चढ़ाए, तब भी वे समता भाव रखते हैं। ये उनकी अपनी उत्तर गुण कहलाते हैं, परिचय सहन करना, आत्म ध्यान करना और समता भाव रखना, ये सब एडिशनल है, उसमें ऑप्शनल है, या कहना चाहिए उनके अपने स्वभावगत ही ये हो जाते हैं 28 मूल गुण के अलावा। इस तरह 28 मूल गुण का वर्णन हो गया। अब और परिचय और क्या चीजें वो साथ में शामिल उनके और हैं, तो कहते तप तपे द्वादश धरे ब्रशदश रतन त्रय सेवे तर सदा, मुनि साथ में वा एक विचरे चहे नहीं भाव सुख कदा, यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपा चरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति। इसके अलावा जो हमने कहा कि परिचय विजय भी करते हैं, समता भाव भी रखते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, कहते तप भी तपते 12 प्रकार के तप, अनसन अवमोदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेश, ये बाह्य तप हैं। इनको बाह्य तप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाह्य वस्तुओं के आलिम्बन त्याग और ग्रहण पर निर्भर करते हैं और बाह्य लोगों के लिए दिखाई भी पड़ते हैं। इसके अलावा जैन धर्म के अलावा अन्य बाह्य मत वाले भी इनको चूंकि करते हैं, इसलिए इन 3 विशेषताओं के कारण ये बाह्य तप कहलाते हैं। और अंतरंग में प्रायश्चित विनय भैयाव्रत स्वाध्याय ध्यान और विसर्ग, ये अंतरंग तप कहलाते हैं, तो वो अंतरंग तप भी धारण करते हैं। इस तरह से बहिरंग और अंतरंग तप दोनों प्रकार के 6 तप 12 तप करते हैं। और धरें ब्रश दश, ब्रश का मतलब है यहाँ पर धर्म, तो 10 प्रकार का जो धर्म है अर्थात उत्तम क्षमा मार्दव इत्यादि, इन 10 धर्मों का पालन करते हैं। रत्नत्रय सेवन सदा और हमेशा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनको ही पालन करते रहते हैं। और ऐसे मुनि महाराज जो उत्तम सहनन के धारी होते हैं, विशेष प्रकार की योग्यता से युक्त होते हैं, वे एक अकेले भी विहार करते हैं अन्यथा समूह में ही विहार करते हैं। पंचम काल में एक अकेले विहार करने का निषेध है, समूह में ही विहार करने का एक्सेप्शन में भी पॉसिबल, लेकिन एक अकेले विचरण करने की परमिशन पंचम काल में नहीं है। पंचम काल में तो समूह में ही विचरण करेंगे, 1-2 महाराज कम से कम है वो रहेंगे। चाहे नहीं भाव सुख कदा, पर विशेषता यह है कि संसार के सुखों की अब उनको कोई आकांक्षा नहीं है। वे विचरण भी करते हैं तो किसी संसार के सुख के लिए नहीं करते हैं, वे अपने आत्म सुख की दृष्टि से विचरण करते हैं। इस तरह से ये सकल संयम कहलाता है। 28 मूल गुणों का वाही में पालन करना और अंतरंग में भीतराकता रखना, ये सकल संयम कहलाता
है। महाराज जी ऐसा कोई नियम है कि एक जगह पे इतने दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे?
हाँ, उसमें है कि चातुर्मास में 4 माह तक रहेंगे, अन्य दिनों में जो है 1 माह 2 माह तक रहेंगे। अच्छा। छोटे शहर में, छोटे गांव में 1 दिन 1 रात रहेंगे, बड़े में 5 दिन रहेंगे। तीर्थ स्थानों पर चाहे जितने समय रह सकते हैं, किसी कारण विशेष से एक स्थान पर बहुत समय तक गुरु की आज्ञा से रह सकते हैं। ये इस तरह के नियम बने हुए हैं उसमें। मुख्य तो ये है कि उस स्थान विशेष से लगाव नहीं होना चाहिए और उसे छोड़ करके ये अपनी सुख सुविधा फैला ली वहां पर और रहने लगे मठ बना करके, तो कहते वो नहीं, अनियत विहार होना चाहिए। इस तरह से ये सकल संयम है। 2 प्रकार का संयम होता है, सकल संयम और एक विकल संयम, विकल चारित्र और सकल चारित्र। विकल चारित्र वो कहलाता अनुव्रत रूप जो श्रावक का है, और सकल चारित्र 5 महाव्रत रूप जो मुनि महाराज जी का है। ये जिसके ये सकल चारित्र जिसको प्राप्त हो जाता है, महाव्रत जिसको प्राप्त हो जाते हैं, अब वो अपने राग द्वेष परिणामों को जीत करके जब आत्मस्थ हो जाता है, चर्या नहीं करता बाहर की, तब उसको स्वरूपाचरण चारित्र होता है। ये संयमाचरण चारित्र है। चारित्र 3 प्रकार का है, सम्यक्ताचरण चारित्र, संयमाचरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र। सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक दृष्टि के आचरण में निर्मलता आती है वो सम्यक्ताचरण चारित्र कहलाता। फिर उसके बाद अनुव्रत और महाव्रत रूप जो चारित्र है वो संयमाचरण कहलाता, चारित्र कहलाता। फिर संयमाचरण चारित्र में निष्णात होकर के जब कोई मुनि आत्मस्थ हो जाता है और राग द्वेष परिणामों को जीत लेता है, तब वो स्वरूपाचरण कहलाता है, अपने स्वरूप में जो लीन हो। अब बाह्य क्रियाएं उसने बिल्कुल टोटली बंद कर दी हैं, ध्यानस्थ हो गया है, तब उसके स्वरूपाचरण चारित्र। जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। समस्त जितनी भी बाह्य प्रवृत्ति है वो सब समाप्त हो गई है, निवृत्ति रूप स्वरूपाचरण चारित्र में लीन हो गए, जिसके द्वारा अपनी आत्मा की निधि अब उनको प्रकट होने वाली है। क्या करते हैं वो आत्मा में लीन होकर के ध्यान शुरू कर देते हैं। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, दारी अंतर भेदिया, वर्णादि अरुरागादि, तें निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेतु निज कर, आपको आपई गयो गुणगुनी, ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद न रहा। ध्यान की ऐसी अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है, इतनी विशुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है कि वे परम पैनी अर्थात उत्कृष्ट रूप से श्रेष्ठ, पैनी मतलब शॉर्ट, बुद्धि अर्थात प्रज्ञा रूप छेनी को डाल करके और भेद करते हैं। किस चीज का भेद करते हैं? अपने आत्मा से द्रव कर्म, भाव कर्म, इन सब का। वर्णादि अरु रागादि है, बाह्य में जो वर्ण हैं, रूप रस गंध इत्यादि जो द्रव कर्म हैं, और अंतरंग में जो भाव कर्म रागादि हैं, उन सब को अपने आत्मा से पृथक करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इस तरह ये शुक्ल ध्यान में पहुंचने वाली प्रक्रिया हो गई, जिसके द्वारा कर्म, भाव कर्म और द्रव कर्म दोनों जो है नष्ट होना शुरू हो गए हैं। अब वो क्या करते हैं? अपने ही भीतर निज माही, निज के हेतु, अपनी आत्मा के लिए ही, और निज कर अर्थात अपनी आत्मा के द्वारा ही, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के लिए, आपको आप ही गए हो। अब वे अपने द्वारा अपनी ही आत्मा को ग्रहण करने की प्रक्रिया में लग गए हैं, जहां गुण और गुणी अर्थात ज्ञान और आत्मा ये दोनों एक मेक हो गए, उसका भेद ही नहीं रहा गुण और गुणी का। जहाँ जानने वाला, जानने की क्रिया और जो जानने योग्य पदार्थ है, वे सब एक मेक हो गए, अर्थात आत्मा ही ज्ञेय है, जानने योग्य है, आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही ज्ञान रूप है। इस तरह ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों जो है कोई भेद नहीं रहा, इतनी लीनता आ गई। हमारे लिए तो जब ध्यान करते हैं तो किसी न किसी चीज का आलंबन लेते हैं, वो चीज पर होती है, हम कुछ अलग होते हैं, ध्यान की प्रक्रिया अलग होती है। कहते नहीं, अब जो है जानना, जानने वाला और जानने की क्रिया तीनों एक मेक हो गई। ज्ञाता भी आत्मा है, ज्ञेय भी आत्मा है और ज्ञान रूप भी आत्मा ही है। ध्यान की ये अत्यंत एकाग्र अवस्था शुक्ल ध्यान की है। इस तरह स्वरूपाचरण चारित्र को प्राप्त करके वे ध्यान में लीन हो जाते हैं। तब फिर और आगे स्थिति क्या होती? जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगटी जहाँ द्रग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही दशा। शुद्ध उपयोग किसे कहते हैं? कहते उपयोग की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब हमारा उपयोग विषय कषाय की तरफ जाता है तब वो अशुभ उपयोग कहलाता है। जब हमारा उपयोग बाह्य धर्म की प्रवृत्तियों में लगा रहता है तो धर्मानुराग जब हमारा होता है तब वो शुभोपयोग कहलाता, जब हम राग द्वेष से रहित होकर निरुपराग हो जाते हैं तब वो शुद्धोपयोग की अवस्था है। वही अवस्था यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र के प्राप्त होने पर बन जाती है। शुद्ध उपयोग में क्या होता है, जहाँ ध्यान, ध्याता और ध्येय, ध्येय भी आत्मा है, ध्याता भी आत्मा है और ध्यान, ध्यान स्वयं आत्म स्वरूप है, ये इन सब के बीच में कोई विकल्प नहीं रह जाता। वच भेद न जहा, वचन के द्वारा कहे जाने वाला कोई विकल्प ही नहीं, वचन का विकल्प भी नहीं रह गया है। और चित भाव कर्म, अपना आत्मा ही अब कर्म हो गया। चिदेश कर्ता अर्थात अपना आत्मा ही जहाँ कर्ता हो गया, चेतना ही आत्मा ही क्रिया हो गई, कर्म कर्ता और क्रिया, किसी ना कोई करता है तो उसका कोई ना कोई कर्म है और उसकी कोई ना कोई क्रिया है। तो कहते कर्ता भी आत्मा है, उसका कर्म भी आत्मा है, उसकी क्रिया भी आत्मा रूप है, तीनों जो है तीनों अभिन्न हो गए, अब भेद रहित है, अखिन्न अर्थात जिसमें कोई डिवाइडेशन नहीं, अखंड हो गई है। ऐसी जो शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा है अर्थात एकदम स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है, जहाँ की अब द्रग अर्थात दर्शन, ज्ञान व्रत अर्थात चारित्र, ये तीनों जो है एक मेघ अभेद रूप हो जाते हैं। अभी तक वे जो 28 मूल गुण के रूप में भेद रत्नत्रय का पालन कर रहे थे, अब उनका वो रत्नत्रय अभेद रूप हो गया है। तो स्वरूप आचरण चारित्र कहो, अभेद रत्नत्रय कहो, शुद्ध उपयोग की दशा कहो, ये सभी एक ही अवस्थाएं हैं। कई लोग जो है स्वरूप आचरण चारित्र नीचे भी मान लेते हैं, चौथे गुण स्थान में मान लेते हैं, लेकिन वैसा बनता नहीं है। मुनि महाराज को ही उतनी ऊंची अवस्था महाव्रत होने पर ही बनता है,
साथ में तो मुनि महाराज होते हैं तो
इसीलिए उसके पहले नहीं होता है, वो उसके ऊपर ही होता, सात के ऊपर ही होता, आठ में से जो ये अवस्था इसका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए इस तरह से ये स्वरूपाचरण चारित्र या शुद्ध उपयोग में मुनि महाराज लीन हो गए हैं, ध्यान की निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। वो निर्विकल्प अवस्था कैसी है, कहते परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृढ़ ज्ञान सुख बल मैं सदा नहीं आन भाव जुनो दिखे, मैं साध साध मैं अबाध कर्म अरुत सुफलनित चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युति पुनि कलनित। अब वे उस आत्मानुभव में लीन हो करके क्या अनुभव करते हैं कि प्रमाण नय और निक्षेप, जानने के तीन ही उपाय हैं, प्रमाण के द्वारा भी जानते हैं, नयों के द्वारा भी हम वस्तु को जानते हैं, निक्षेप के द्वारा। अब जब हम अपने आत्मा को ही जान रहे हैं तो प्रमाण नय और निक्षेप सब उसी में विलीन हो गए हैं, उन सब का यहाँ पर उद्योत अर्थात वे सब प्रकट रूप से दिखाई ही नहीं दे रहे, अर्थात वे आत्म रूप ही हो गए, आत्म स्वरूप ही हो गए। द्रग ज्ञान सुख बल अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल, ये जो है वो मेरा स्वरूप है, इसके अलावा और अन्य जो भी भाव हैं, नहीं आन भाव जो मोख है, मुझे और किसी भाव की आवश्यकता नहीं, मेरे भाव है ही नहीं, मेरा तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय ही मेरा है, और मैं साध हूँ, मैं ही साधक हूँ, और अबाधक कर्म रूत सुफलनित है, और मैं कर्म और उसके फल से अबाध अर्थात विकल्प रहित, अब न मुझे कर्म करने के और न कर्म के फल से प्रभावित होने की आवश्यकता है, आत्मस्थ हो गए हैं। इस तरह से मैं ही साध और मैं ही साधक, मेरी आत्मा ही मेरा साध है और मेरी आत्मा ही साधक है उस साध को प्राप्त करने वाला, इस तरह से सब प्रकार से विकल्प से रहित होकर के चिद पिंड अर्थात चेतना का मैं एकमात्र पिंड स्वरूप रह गया हूँ, चंड अर्थात निर्मल ऐश्वर्यवान, ये चंड का अर्थ यहाँ पर है, और अखंड तो अखंड है ही, और सुगुण करंड अर्थात अच्छे अच्छे अनंत गुणों का मैं भंडार हूँ, और कलनिते यहाँ पर जो है अशुद्धता भी लिया है, और शरीर से भी मैं रहित हूँ, कल अर्थात शरीर भी होता है और कल मतलब अन्य जो बाह्य पदार्थ है,
पाप लिया है
तो पाप असल में कल धातु काम ने अपने इच्छा से जो अर्थ लेना हो, कल मतलब सकल और निकल, तो कल मतलब शरीर भी होता, तो शरीर से या कि अपन यहाँ शरीर ही लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि द्रव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, देखिए अपन कह रहे हैं कि कर्म अरु तसु फलनित है, तो वहाँ द्रव कर्म, भाव कर्म सबसे रहित हो गए, शरीर से भी मैं रहित हूँ, इस तरह की फीलिंग वहां जाकर के कहते यो चिंत, इस प्रकार चिंतन करते हुए निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नहीं कहो, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौघाति विधि कानन दयो सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को सुमक, ये जो वर्णन करते आ रहे हैं स्वरूप आचरण का, वो श्रेणी में चढ़ गए हैं महाराज और कर्मों का धीरे धीरे क्षय कर रहे हैं। फिर उनको शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो गई ग्यारहवें गुण स्थान में जाकर के, इतना अपने आत्मा का चिंतन करते करते वहां तक पहुंच गए। और जिस आनंद को वो प्राप्त कर रहे हैं वो आनंद स्वर्गों के इंद्र नाग या नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती और अहमिंद्र जो ऊंचे स्वर्गों में कल्पातीत स्वर्गों में होते हैं सर्वार सिद्धि के देवों को भी जैसे वो आनंद प्राप्त नहीं होता जो कि शुक्ल ध्यान की प्राप्ति के समय एक साधक के लिए होता है। तो शुक्ल ध्यान की अग्नि में अब उन्होंने जो है अपने चार घातिया कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय इनको इनका कानन दहु मतलब ये जंगल है उस जंगल को अग्नि के द्वारा ध्यान अग्नि के द्वारा जला दिया। तो क्या प्राप्त हुआ? सब लख्यो केवल ज्ञान करी। तब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से वो सब संसार के समस्त पदार्थों को जान लेते हैं देख लेते हैं। भविलोक को शिव मत कहो, और इतने ही नहीं जो भव्य जीव है केवल ज्ञान होने के बाद उन भव्य जीवों के लिए भगवान शिव मार्ग अर्थात मोक्ष का मार्ग भी कहते हैं। अभी उन्हें मोक्ष नहीं हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद दो काम किए उन्होंने कि सब कुछ जान लिया और सब जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग बता दिया।
केवल ज्ञान जिसको मतलब केवल अरहंत भगवान ही उपदेश देते हैं ना, बाकी तो
तीर्थंकर विशेष रूप से उपदेश देते हैं, बाकी केवल ज्ञान के पास सब उपदेश देते हैं।
अच्छा देते हैं
सब उपदेश।
अच्छा मुझे पता लगा
लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होता मतलब उससे तीर्थ नहीं चलता।
अच्छा
तीर्थ तो चलता है तीर्थंकर के देश के 24 ही रहेंगे।
बट वैसे केवल ज्ञान होने के बाद में
सबकी तिब्बत
नहीं हो तो वो देते हैं
उपदेश देते हैं और बाकायदे लोग उनसे लाभान्वित होते हैं वो उतने ही समय के लिए, वो रिकॉर्ड नहीं होता गंधर्व के अभाव में।
और आजकल तो टैप ऐसा कहीं हो जाए तब तो टैप हो
जाएगा। उनकी डीप कास्टिंग को टेप करना लेकिन आसान नहीं, उनकी जो तिब्बत ध्वनि है उसको ट्रांसलेट कौन करेगा? ध्वनि ओंकार रूप ध्वनि है,
ओंकार रूप ही रहेगी,
अकेला आ जाएगा, ट्रांसलेट कहाँ से करेगा?
केवली की भी वही रहेगी, तीर्थंकर
वही सब केवली भगवान की भी, सिद्ध को केवल ज्ञान होगा वो ओंकार ध्वनि तो बोलेंगे।
अच्छा तो फिर तो वो मालूम ही नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा जब तक
वो तो वहीं के वहीं जो देव रहते हैं वो उनको ट्रांसलेट करते रहते हैं, सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं। फिर उसके बाद अब जब अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद कहते पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन्न माही अष्टम भूवसे वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक् आदिक सब लसे संसार खार अपार पारा वार तरिति रही गए अविकार अकल अरूप सुरचित रूप अविनाशी भय। फिर चार घातिया कर्मों के नाश करने के बाद शेष जो अघातिया कर्म बचे हुए विधि का अर्थ यहाँ कर्म है, अघाती विधि अर्थात अघातिया कर्म उनको भी नष्ट कर देते हैं भगवान शेष दो शुक्ल ध्यान के माध्यम से। और छिन्न माही अर्थात एक समय में अगले समय अष्टम भूवत् हैं अर्थात सिद्ध शिला पर जाकर के, आठवीं पृथ्वी वही है सिद्ध शिला, वहां पर जाकर के आत्मस्थ हो जाते हैं। वसु कर्म विनसे सुगुण वसु, और आठ इस तरह आठ कर्मों के नाश होने पर उनके भीतर आठ गुण प्रकट हो जाते हैं, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर अभ्यावाद सुख भी उनके लिए प्राप्त हो जाता है, और अगुर लघुत्व सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व और शायक सम्यक्त, इस तरह से ये आठ गुण सम्यक्त आदिक सब लसें, शायक सम्यक्त को लेकर के शेष आठ गुण इस प्रकार उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। अब अपने लिए जो है कहते हैं भगवान के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं ये संसार जो कि क्षार रूप है अर्थात खारा है अपार है, इसका पार नहीं है, पारावार अर्थात समुद्र, ये संसार तो समझो कि अपार और क्षार रूप ही है, उसको तरी पी रही गए भगवान ने उसे भी पार करके और उस पार पहुंच गए हैं। और उस पार पहुंच करके क्या अनुभव कर रहे हैं? कहते अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भय। भगवान जब सिद्ध हो जाते हैं तो संसार के सागर को पार कर चुकते हैं और विकार से रहित शरीर से रहित और मूर्त अर्थात अरूपी हो जाते हैं, अब उनका कोई बाह्य दिखने वाला रूप नहीं है। सुचि अर्थात एकदम पवित्र निर्मल, और चिद्रूप अर्थात जैसा उनका चेतना का स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते, अविनाशी अर्थात हमेशा के लिए अब अविनश्वर पद को प्राप्त कर लेते हैं इस तरह। और वहां जाकर के क्या करते हैं मोक्ष में? निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित भये रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिनये धनि धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजी वर सुख लिया। यहाँ कहते हैं कि निज माही अब जब वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे तो केवल ज्ञान की अवस्था में ही समस्त लोक और अलोक को देखने लगते हैं, पर जब मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर गए हैं तो वहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं उनके अंदर तीनों लोक, जैसे कहते ना सकल गेय ज्ञायक तदपि, समस्त लोक अलोक उनके लिए प्रकट हो रहा है। परजाय प्रतिबिंबित थे, गुण और पर्याय जितनी भी छाव द्रव्य और उनकी अनंत गुण और अनंत पर्याय उनकी एक साथ उनके ज्ञान में प्रकट हो जाती हैं और अनंत अनंत काल तक वे रहे आते हैं। यथा तथा शिव परिणय, एक बार जैसे जो है जिस प्रकार मोक्ष रूप को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से रहे आते हैं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन उनके नहीं आता है। इस प्रकार धनी धन्य है जे जी, कह रहे हैं कि ये जो हाँ ये जो धनी धन्य है, अर्थात ऐसे महान आत्माएं धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने नरभाव को पा करके ऐसा कार्य किया है, यह कार्य किया, अर्थात मुनि पद आदि की प्राप्ति रूप और रत्नत्रय की प्राप्ति रूप ये कार्य किया। तिन ही अनादि भ्रमण, और उनके द्वारा ही इस प्रकार का जो अनादि काल से भ्रमण करने वाला पांच प्रकार का परिवर्तन वाला संसार था उसको छोड़ करके तजी वर सुख लिया, अर्थात श्रेष्ठ अपने आत्म सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। ये तो खत्म ही हो गया। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लहे तिन श्रेयस जल जग मल करे इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो जब लोन रोग जरा गहे तब लोन झटत निज हित करो। इसमें दोनों बातें कह रहे हैं कि रत्न त्रय का फल क्या है और अपने आत्मा के उपदेश के लिए अंत में उपसंहार कर रहे हैं कि मुख्य और उपचार इन दो प्रकार के भेदों से, या भेद और अभेद ऐसे दो प्रकार के भेदों के द्वारा जो महान भाग्यशाली हैं वे ही रत्नत्रय को धारण करते हैं और उस रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो धारण कर चुके हैं वे मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, जो आगे धारण करेंगे वे भी जो है मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उनके स्वयं रूपी जल से ही इस संसार का मल नाश को प्राप्त होता है। उन वे जो है अपने उस मोक्ष पद को प्राप्त करके हम सब जीवों के लिए भी मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए उपदेश देते हैं। उनका उपदेश क्या है? कहते ये उपदेश है कि इतना सब जान करके, आलस छोड़ करके, साहस धारण करके यह हमारी शिक्षा सम्मान पूर्वक ग्रहण करो, इस शिक्षा का आदर करो। तुम उस शिक्षा को इग्नोर मत करो, सुन करके मत बैठा। आदर वही कहलाएगा शिक्षा का कि हम उस शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन को पालन करें। क्या शिक्षा है? कि जब लो न रोग जरा गए, जब तक शरीर में कोई व्याधि नहीं हुई या बुढ़ापा नहीं आया है तब तक जो है झटती एकदम तत्परता पूर्वक अपने आत्मा का हित कर लेना चाहिए। ये इस शिक्षा इसके द्वारा दी गई है। और अंतिम शिक्षा क्या देते हैं? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वे कहां रचो पर पद में न तेरो पद यही क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चुके है। ये आखिरी सीख दे रहे हैं कि राग द्वेष जो है वो आग की तरह हैं जो निरंतर इस जीव को जलाते रहते हैं। अगर जीव इस राग द्वेष से बचना चाहे तो उसे समता रूपी अमृत समामृत अर्थात समता रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए, वही उसे इस राग द्वेष से बचा सकता है। राग द्वेष से रहित अवस्था का नाम ही तो समता है, तो समता प्राप्त कर लें तो राग द्वेष से रहित हो सकते हैं। और हमने अनंत काल व्यतीत हो गया, विषय कषाय का ही तो आज तक सेवन किया है, लाभ उससे कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसका त्याग करके, और अकेला त्याग करने से काम नहीं चलेगा, करके निज पद अर्थात अपना जो आत्मा का पद मोक्ष पद है उसके लिए वेये अर्थात से के पैरल वेये मतलब जानना चाहिए या उसको प्राप्त करना चाहिए, ऐसा भी ले सकते हैं। प्राप्त कीजिएगा अपने आत्म पद को, मोक्ष पद को प्राप्त करिए। कहाँ रचो पर पद में, अर्थात यहाँ पर पद मतलब स्थान विशेष है। हम जो है और दूसरी जगह संतुष्ट हो जाते हैं तो कहते कि बाकी सब तो जो है पर पद है अर्थात पर भाव है, उन पर भावों में कहाँ रचे पचे हो, वो तुम्हारा काम नहीं है। और उस पद के माध्यम से जो बाह्य पद है, बाह्य भाव है, उनके माध्यम से दुख क्यों सह रहे? हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि अब दौल अर्थात संबोधन कर रहे हैं कि हे अपने स्वयं के लिए, लिखने वाला लेखक स्वयं कह रहा कि हे दौल तुम्हें भी यही शिक्षा है और सबके लिए भी है कि हो सुखी, अगर सुखी होना चाहते हो तो हो, और कैसे होगे सुखी? स्वपद रचि अपने आत्मपद में रचो अर्थात उसमें सिद्ध पथ में लगो, उसी में लग जाओ, उसी की रुचि करो, दाव मत चूको। अब ये जो दाव मिला हुआ है उसको चूकना नहीं चाहिए, अर्थात उसका लाभ ले लेना चाहिए। एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख करो तत्व उपदेश या लखी बुद्ध जल की भाग लघुदी तथा प्रमाद थे शब्द अर्थ की भूल सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भव भूल। हाँ, इसमें रचनाकार ने जो है एक नौ वसु एक वर्ष की इस तरह से 1891 में लिखा गया है, तो 1891 में तीज के दिन जो है शुक्ला वैशाख शुक्ला तीज के दिन इसको पूरा हुआ ये ग्रंथ, तत्व का उपदेश इसके माध्यम से किया गया और एक बुद्ध जन की छह डाला है। तो दौलत राम जी कह रहे कि हमने बुद्ध जन की छह डाला से शिक्षा लेकर के इसे लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा, ये उनकी अल्प माने अल्पज्ञता का बोध करा रहे हैं। और लघुदी तथा प्रमाद से हमारी बुद्धि अल्प है और हो सकता है कि हम भी कहीं चूक गए हों, तो कहते हैं शब्द अर्थ की अगर कोई भूल हो गई हो तो जो विद्वान जन हैं वे इसको सुधार करके पढ़ें, क्योंकि सबके लिए जो पावो भव भूल इस संसार से पार होने का उद्देश्य सभी
पर इसने भी दिया होगा,
इसमें ठीक है।